हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो, गीता का सार, श्लोक क्रमांक 64 और 65। इन श्लोकों में चर्चा की जाएगी कि भगवान की कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान स्वयं बता रहे हैं, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवैशेर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अब इससे अधिक भगवान क्या बताएंगे। स्वयं ही भगवान बता रहे हैं कि हम भगवान की कृपा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा इन शब्दों पर विचार करेंगे। राग और द्वेष, राग का अर्थ होता है पूर्व संस्कारों के कारण कुछ इंद्रिय विषयों को भोगने की मेरी प्रवृत्ति होती है। हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से द्वारा प्रभावित व्यक्ति अलग अलग विषयों के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। जैसे तमोगुणी लोग शराब के प्रति आकृष्ट होंगे, रजोगुणी लोग स्त्री और धन के प्रति आकृष्ट होंगे और सत्वगुणी लोग ज्ञान के प्रति आकृष्ट होंगे। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, राग और द्वेष से मुक्त, यानी कि कुछ कार्य करने मेरे को अच्छे लगते हैं पूर्वगत आदतों के अनुसार। अगर वो मेरी आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए अच्छे नहीं हैं तो उसको हम नहीं करेंगे। और हाँ, और अगर हमें कुछ करना नहीं अच्छा लगता और हमारे आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छे हैं तो हम इसको करेंगे। ये होता है विधेय आत्मा का अर्थ। विधि आत्मा का अर्थ हो गया जो व्यक्ति नियमित जीवन जीता है और शास्त्रों के नियमों का पालन करता है। और प्रभुपाद जी मुख्य रूप से यहाँ पे बोल रहे हैं हम सब भक्तों के लिए, कृष्ण भावना भावित जीवन के जो नियम है उसका हम पालन करते हैं। इससे पहले कि हम श्लोक में जाएं, हम नियमों के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे, नियम पालन के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। इस जगत में या हमारे भक्ति के जीवन में जब हमको कुछ नियम बताए जाते हैं तो इन नियमों को देखने का दृष्टिकोण कैसा है उसके अनुसार हम उन नियमों को एक दबाव के रूप में देखेंगे या एक सुरक्षा के घेरे के रूप में देखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में है और चारों ओर उसमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, बिजली के तार लगे हुए हैं ताकि बाहर के लोग जो अवांछित लोग हैं वो घर में नहीं आए। तो एक सभ्य व्यक्ति ऐसे फेंसिंग को, ऐसे बिजली के तार के घेरे को अपने लिए एक सुरक्षा का घेरे के रूप में अनुभव करता है, क्योंकि वो जानता है कि बाहर जो है वो खतरा है और उस खतरे से ये बिजली का घेरा मेरे रक्षा कर रहा है। और इस बिजली के घेरे की वजह से वो स्वयं भी बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि बाहर खतरा है। अब अगर वो सोचने लग जाए कि बाहर बहुत अच्छी चीज है और यहाँ घर में तो मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो फिर यही बिजली का घेरा उसको एक जंजीर, एक बेड़ी जैसे लगने लग जाएगा। तो या फिर जैसे एक बच्चा है और उसको माँ उसको गोद में ली हुई है तो माँ ने उसको पकड़ा भी हुआ है, तो बच्चा ये भी अनुभव कर सकता है कि माँ ने मेरे को, मेरी रक्षा करने के लिए मेरे को गोद में लिया हुआ है और इस कारण से मैं अपनी इच्छा के अनुसार जहां तहां नहीं जा सकता। और बच्चा ये भी सोच सकता है कि माँ ने मेरे को बांधा हुआ है। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने, गुरु महाराज ने हम लोग को आज्ञा दी है, चार नियमों का पालन करना है कम से कम और 16 माला का जब करना है कम से कम इतना तो करना ही, बाकी अन्य भक्ति के नियम पालन करना, मंगल आरती करना, जप करना, भक्ति करना। तो इस प्रकार से इनके द्वारा जब व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान होगा तो समझेगा कि इसके द्वारा मेरी रक्षा हो रही है भौतिक प्रकृति के प्रभाव से। और जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तो अपने चेतना में शुद्धिकरण का अनुभव भी करते हैं। अब इन नियमों का, भक्ति के नियमों का हमारी चेतना में क्या फर्क पड़ता है। हमारी चेतना को अगर आप एक रूम से, एक कमरे से कंपेयर करें, तुलना करें, तो कमरे को अगर हम साफ रखना चाहते हैं तो हम सफाई तो करते ही हैं, साथ साथ ये भी प्रयास करते हैं कि बाहर की गंदी वस्तुएं हमारे कमरे में ना आए। उसी प्रकार से हृदय को हम शुद्ध करना चाहते हैं तो हमें दोनों ही चीजें करनी पड़ेंगी, एक कि जो गंदी वस्तुएं हैं वो हमारे पास ना आए गंदे विचार, गंदे संस्कार ना आए और साथ साथ अच्छे संस्कार मन में जाएं ताकि मन हमारा पवित्र हो। तो इस प्रकार से अच्छे संस्कार प्राप्त करने के लिए अगर इस समय मेरा मन तैयार ना हो फिर भी व्यक्ति को करना चाहिए, और बुरे संस्कार प्राप्त करने के लिए मन अगर इच्छुक हो फिर भी हमें उसे नहीं करना चाहिए। तो ये है, अगर इस प्रकार से हम करेंगे तो भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी, और वो कृपा से क्या होगा उसके बारे में अगले श्लोक में चर्चा करेंगे, तात्पर्य को देखेंगे। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि मन अभी भी भोगों में आसक्त रहता है। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विशेष स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। जैसे भगवान ही भगवद गीता में बोलते हैं कि उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और ऐसा करने वाले संत पुरुष होते हैं और वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे शास्त्र में बोला गया है कि भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से 6 महीने का व्रत करने का, 6 महीने निराहार रहने का जो पुण्य मिलेगा वो भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से मिल जाता है। तो एक भक्त लगेगा कि वो तो बहुत भोग कर रहा है, भगवान का प्रसाद पा रहा है, दाल चावल खा रहा है, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो भगवान को प्रसन्न कर रहा है क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि भगवान की आज्ञा पालन करने में सुख मिल रहा है, तो इसलिए भोगों को देख करके, खाने की वस्तुओं को देख करके भक्त का मन नहीं मचलेगा। लेकिन जो अपने आप को कृत्रिम रूप से निराहार रख रहा है उसका मन मचल सकता है, और कुछ समय के बाद हो सकता है उसकी इच्छा हो तो फिर वो कुछ भी ना खाने योग्य वस्तु भी खाने के लिए बाध्य हो जाए। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह इस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह समान रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान के अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। एक पॉइंट ये है कि भक्त को इंद्रियों में आसक्ति हो सकती है, जो इंद्रियों के कार्य हैं उसको करने की प्रवृत्ति चेंज नहीं की जाती है, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति ये सीखता है कि उन इंद्रियों के कार्यों को भगवान की सेवा में हम कैसे नियोजित कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इसके द्वारा जो पूरा तरीका है भक्ति का वो बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वही प्राय करना है भक्ति में, केवल उसका उद्देश्य भगवान की ओर लक्ष्य करके होना चाहिए। जो हम लोग दिन में चर्चा करने की आदत है वो भगवत चर्चा में करें, गाने की आदत है तो भगवान के नाम को गाएं, जो कि सर्वश्रेष्ठ तरीका है भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति करने का। प्रसाद खाना तो खाते ही हैं तो भगवान को अर्पित करके खाएं। तो आप देख सकते हैं कि इंद्रियों के ही वेग को हम खाली मोड़ दे रहे हैं भगवान की तरफ, हम उनको दबाने का ज्यादा प्रयास नहीं करते प्राय। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात जो हमने सीखी यहां पे कि व्यक्ति अगर अपने इंद्रियों को भोगों से रोक करके भगवान की तरफ जोड़ता है और इसमें राग और द्वेष का विचार ना करे तो भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। और उसकी कृपा से, भगवान की कृपा है क्या, कृपा का ये होगी कि भगवान उसको प्रेरणा देंगे हृदय में भी और शास्त्र के द्वारा भी और गुरु के माध्यम के द्वारा कि जो कृष्ण को प्रसन्न करे बस वही वो कार्य करने में रुचि रखेगा, स्वाभाविक रूप से वो इस प्रकार की रुचि रखेगा। अब हम थोड़ा सा शिला बलदेव विद्याभूषण क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा उसे विचार करेंगे। टेक्स्ट 64 को तो वे कह रहे हैं यहाँ पे, इन श्लोकों की चर्चा हो रही है जो प्रश्न अर्जुन ने किया था कि किम आसीत व्रजेत किम, तो व्रजेत किम, किस प्रकार से एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चलता है, यानी कैसे अपनी इंद्रियों को नियोजित करता है, अपनी इंद्रियों का उपयोग कैसे करता है, उस प्रश्न का उत्तर इन श्लोकों में हो रहा है, 64 से लेकर के आखिरी के श्लोक 71 तक। तो उसमें यहाँ बताया गया है कि अगर बाह्य रूप से हम अपनी इंद्रियों को जीत भी लेते हैं लेकिन अगर मन को भगवान में नहीं लगाते तो फिर उस व्यक्ति की हृदय की जो आसक्ति है, मन की आसक्ति है भोगों के प्रति, विषय वस्तुओं में, वो नहीं जाती है। तो इस कारण से जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को, इंद्रिय के विषयों को देखता है, फिर भी उसका मन शुद्ध हो जाता है भगवान की भक्ति करके, तो वो उन जो खराब विषय भोग की वस्तु है उनको देख करके उसके प्रति आकृष्ट नहीं होता है। और ये भगवान की कृपा है। कृपा का अर्थ है शुद्धता। प्रसाद यहाँ पे अर्थ केवल खाने वाला प्रसाद नहीं, वो तो है ही, प्रसाद का अर्थ है शुद्धता, प्रसाद का अर्थ है कृपा। तो इस प्रकार के आसक्ति से मुक्त होकर के कि ये विषय भोग अच्छे हैं तो मैं इसे भोगूंगा, ये खराब हैं इनको नहीं भोगूंगा, इनको इन आसक्ति से रहित होकर के केवल कृष्ण विषय विषय भोगों में लग करके, विषय भोग तो नहीं कहना चाहिए, कृष्ण विषय विषयक वस्तुओं में से आकृष्ट होकर उसमें संलग्न होना ही ये शुद्धता का लक्षण है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जगत के भोगों से निवृत्त होकर के उनमें वैराग्य होता है भक्त के हृदय में, और भगवान विषयक वस्तुओं में उसकी आसक्ति होती है। बाह्य दृष्टि से वो वस्तुएं खराब या अच्छी लग सकती हैं, लेकिन भक्त की आसक्ति केवल कृष्ण की सेवा करने में होती है, और ये इसकी शुद्ध चेतना का लक्षण है। और ये लक्षण इसका है कि उसका मन अब भगवान में आसक्त है, भगवत सेवा में आसक्त है। तो इस प्रकार की बातों से, हाँ ये इंपॉर्टेंट आप बात यहाँ बोल भी रहे हैं बलदेव विद्याभूषण की, श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण की, भौतिक वस्तुओं की में राग और द्वेष से उसका मन विरक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में उसका मन आसक्त होता है। तो बाहर के विषय भोग को भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि भगवान की सेवा की इच्छा से अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाता है, भगवान की सेवा में लगाता है। एक श्लोक और देखिए 65। प्रसाद सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो अब ये प्रश्न आएगा कि शुद्ध मन हो जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ बता रहे हैं श्री बलदेव विद्याभूषण इस कमेंट में कि जिस व्यक्ति का, जिस भक्त का मन शुद्ध हो जाता है, तो भौतिक पदार्थ से संपर्क होने वाले जो दुख होते हैं उससे वो मुक्त हो जाता है। इस बात को भगवान गीता में बताते हैं, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौंत्य नतेषु रमते बुधा। इंद्रिय भोग करने से ही हमारे जीवन में दुख आता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें रमण नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं रमण नहीं करते, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जो भक्त हैं उनका मन भगवान में रमण करता है, तो स्वतः वो इंद्रिय भोग के विषयों से निरत हो जाते हैं, विरत हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो मन है, जो बुद्धि है, वो शांत हो जाता है और वो आत्मा की तरफ, भगवान की तरफ उसकी बुद्धि फिक्स हो जाती है। अवतिष्ठते, अवतिष्ठ तिष्ट मतलब बैठना, अवतिष्ठ मतलब बढ़िया से बैठना, यानी उसकी बुद्धि अब बैठ जाती है कि मुझे कृष्ण की ही सेवा करी है। आमे कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो और दुख ना है, ये बात हृदय में गहराई से धस जाती है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण का सेवक हूँ, और मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। तो अगर ये भावना दृढ़ हो जाती है हृदय में, तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रह के जाएगा। तो भगवान यहाँ पे बात बोल रहे हैं, और अगर इस प्रकार से हम अयुक्त हैं, भक्ति नहीं करते हैं, या भावना स्थिरित नहीं हुई है, तो क्या होगा, उसके बारे में 66 में चर्चा करेंगे भगवान, उसको हम आगे समझाएंगे। हरे कृष्णा।